तारीख 14 अक्टूबर दिन सोमवार, कार्यक्रम नमस्कार भारत के साथ मैं हूँ मानसी दास। हरियाणा में कांग्रेस ने कहा करेंगे किसानों के कर्ज माफ, लेकिन वादा कैसे होगा पूरा।
आमदनी बहुत हो सकती है, माइनिंग से बहुत हो सकती है, वहाँ स्कैम हो गया। इस प्रकार रिसोर्सेज आपने बढ़ाने पड़ेंगे, हरियाणा के बहुत गुंजाइश आगे बढ़ने की।
तेलंगाना में सरकार से नाराज हैं बस कर्मचारी,
बहुत सारे एम्प्लॉयज में तनाव बढ़ गया है, वो अपने डिमांड्स पे डटे हैं और उसी तरफ गवर्नमेंट भी अपने डिसीजन पे डटी है।
मुश्किल में भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, लेकिन सरकारें हैं कि मानती नहीं, सुनवाएंगे वुसत की डायरी।
औद्योगिक विकास का चक्का जाम है और रुपया डॉलर के पैरों से लटक रहा है, मगर मोदी सरकार की तरह इमरान खान सरकार भी यही कह रही है कि सब अच्छा है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का कहना है कि तुर्की के हमले को रोकने में सीरियाई सेना उनकी मदद करेगी। इसे लेकर सीरियाई सरकार के साथ उनका समझौता हुआ है। सीरियाई सरकारी टेलीविजन ने पहले खबर दी थी कि तुर्की की सेना का सामना करने के लिए सीरियाई सैनिक उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं तुर्की के बढ़ते सैन्य अभियान के कारण अमरीका सीरिया में मौजूद अपने सभी सैनिकों को बाहर निकाल रहा है। जापान में आए भीषण तूफान हिगिबिस के बाद बचाव के लिए करीब 1000 जवानों और बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। यह तूफान कई सालों में आए शक्तिशाली तूफानों में से एक है। इसके कारण कम से कम 23 लोगों की जान चली गई है। हिगिबिस शनिवार को राजधानी टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में इजू प्रायद्वीप की मुख्य भूमि पर टकराया था। सरकारी समाचार प्रसारक NHK ने बताया कि तूफान के चलते 13 लोग लापता हैं। पोलैंड में आम चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल के मुताबिक लॉ एंड जस्टिस पार्टी फिर से जीतती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक पार्टी को करीब 44% वोट मिल रहे हैं, जो कि संसद के निचले सदन में बहुमत के लिए पर्याप्त संख्या है। वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी सिविक कोलिएशन को 27% वोट मिल रहे हैं। लॉ एंड जस्टिस पार्टी के एक सांसद जीसवा क्रेस्नोडेम्स्की ने बताया कि पार्टी की जीत के पोलैंड के लिए क्या मायने हैं।
मामे पवोदी दो रादोश्ची, बो मिमो तेगो पोटेंजनेगो फ्रंट।
इसका मतलब है कि हम हमारी नीतियां जारी रख सकते हैं, जिसने पोलैंड की नीतियों का रूप ही बदल दिया है। हमने अपने देश को मजबूत किया है, हमें आर्थिक स्तर पर भी सफलता मिली है, साथ ही लोगों ने भी हम पर पूरा भरोसा दिखाया है। ये थे लॉ एंड जस्टिस पार्टी के एक सांसद के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव के बाद आ रहे एग्जिट पोल में राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार कैस सईद की एकतरफा जीत बताई जा रही है। इसके बाद से ट्यूनीशिया में राजधानी की सड़कों पर जश्न का माहौल है। कैस सईद एक पूर्व लॉ प्रोफेसर हैं। उन्होंने अरब क्रांति के मूल्यों को और आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाया था। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कैस सईद ने उन्हें जीत के लिए धन्यवाद दिया। सभी देशवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे वोट दिया उन्हें भी, और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी। दुनिया भर में मौजूद ट्यूनीशिया के लोगों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया है। हमने पूरी ताकत से एक नया ट्यूनीशिया बनाने की कोशिश की है। ये थे ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार कैस सईद के शब्द। इक्वाडोर में सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे समूह के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत राजधानी कीटो के बाहर एक स्कूल के अंदर हो रही है। सुरक्षा के मसले और विरोधी समूह की लाइव प्रसारण करने की मांग के चलते इस बैठक में कुछ घंटों की देरी हो गई। इक्वाडोर में ईंधन पर सब्सिडी कम करने को लेकर पिछले 2 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रुसेल्स में हुई बातचीत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि संशोधित ब्रेक्जिट सौदे तक पहुंचने के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालांकि किसी भी पक्ष ने बातचीत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। ये बातचीत आयरिश सीमा के विवादास्पद मुद्दे पर केंद्रित थी। केन्या के धावक ब्रिजिट कोसगेई ने 16 साल पहले बना महिलाओं का विश्व मैराथन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने शिकागो में हो रही इस मैराथन को 2 घंटे 14 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लिया। पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले उन्होंने करीब 1 मिनट पहले ये दौड़ पूरी कर ली। पिछला रिकॉर्ड ब्रितानी एथलीट पाउला रेडक्लिफ ने बनाया था। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सीरिया में चल रहे तुर्की के सैन्य अभियान से जुड़ी खबर से। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का कहना है कि तुर्की के हमले के खिलाफ सीरियाई सरकार से उनका समझौता हुआ है, जिसके तहत सीरियाई सेना उनकी मदद करेगी। इससे पहले सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर खबरें आई थी कि सीरियाई सेना तुर्की सेना का सामना करने के लिए उत्तर की तरफ बढ़ रही है। इधर तनावपूर्ण माहौल के बीच अमरीका ने घोषणा की है कि सीरिया के बिगड़ते हालातों के चलते अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि करीब 1,000 अमरीकी सैनिक जितना जल्दी हो सके सीरिया से निकाल लिए जाएंगे।
Despite our opposition, they decided to make this incursion into Syria. And at this point in time, the last
हमारे विरोध के बावजूद तुर्की ने सीरिया पर हमला किया और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि वो दक्षिणी सीरिया की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जो कि तय योजना के मुताबिक नहीं है। साथ ही कुर्द लड़ाके भी सीरिया और रूस के साथ तुर्की पर जवाबी कार्रवाई के लिए बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे सैनिकों के इन दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच फंसने की आशंका है। अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के शब्द। इन हमलों के बीच रविवार को कुर्द अधिकारियों ने बताया कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े करीब 800 लोग एक शिविर से भाग निकले हैं। उन्होंने बताया कि उत्तरी सीरिया के एन इस्सा शिविर के नजदीक लड़ाई चल रही थी। पिछले बुधवार से उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की लगातार हवाई हमले कर रहा है। उसका कहना है कि वो एक सेफ जोन बनाना चाहता है जिसमें सीरियाई शरणार्थियों को रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि इलाके में चल रही लड़ाई के कारण 130,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं और ये आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। रुख भारत का करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने किसानों और गरीब भूमिहीनों की कर्ज माफी का वादा किया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 32 पन्नों के अपने संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा नहीं किया है। लेकिन पार्टी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का वादा किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, सुनिए।
हमारी प्रतिस्पर्धी पार्टी कांग्रेस वो किसानों को खुश करने के लिए या उनकी कल्याण करने के नाते उनके हिसाब से उन्होंने एक ही रट लगाई हुई है, क्या कि हर बार घोषणा करो किसान का कर्ज माफ करेंगे। अभी किसान का कर्ज माफ कई जगह पर घोषणा की भी है, वो उसके ऊपर पूरे नहीं उतर सके हैं। पंजाब देख लीजिए, उनके पास तो एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने ये घोषणा की तो सिर्फ 50,000 रुपए की एक किश्त ये उन्होंने माफ की, इसके आगे बढ़ नहीं सके। हम चाहते हैं कि आखिर किसान इस दबाव में आए ही क्यों।
हरियाणा सरकार पहले ही वित्तीय घाटे में चल रही है, ऐसे में अगर चुनाव करके जीती कांग्रेस तो वो किस तरह अपने चुनावी वादे पूरे करेगी और क्या इससे सरकारी खजाने का घाटा और नहीं बढ़ेगा। बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा से संपर्क किया और उनसे सबसे पहले यही सवाल किया।
आमदनी बहुत हो सकती है, यानी माइनिंग से बहुत हो सकती है, वहाँ स्कैम हो गया, ओवरलोडिंग से है वो स्कैम हो गया। इस प्रकार रिसोर्सेज आपने बढ़ाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे, क्रिएट करेंगे रिसोर्सेज हरियाणा के बहुत गुंजाइश आगे बढ़ने की।
मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे आकलन करते हैं मनोहर लाल खट्टर का, क्योंकि अभी कहीं पढ़ रहा था अखबार में कि मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है कि मुझे लोग नोविस कहते थे, मैं और आप मुझे वो राजनीति का खिलाड़ी कहने लग गए।
अपने आप की प्रशंसा कोई भी करें, ये विफल सरकार है और घोटालेबाज सरकार है, और इसमें जिम्मेवारी किसकी होती है, जो वो हेड्स द गवर्नमेंट। मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करता, अपनी जिम्मेवारी से उनको एस्केप नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है। और ये दिखावा और करके कुछ नहीं होने वाला है, और वो अपने आप को खिलाड़ी कह रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए मैं माहिर खिलाड़ी हूँ।
ऐसा लग रहा है कि बड़ी इनफाइटिंग है कांग्रेस में, खासतौर पे जो आपके पूर्व प्रधान है अशोक तंवर, वो तो ये भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि टिकटों को बेचा गया है कांग्रेस पार्टी में।
देखिए वो तो बीजेपी में बहुत लगे हुए हैं और अंतर्कलह बीजेपी में बहुत ज़्यादा है। ये तो प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, जो कोई मतलब ऐसी निराधार बातें कोई भी कह सकता है, उसका क्या इलाज?
तो ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं अशोक तंवर? अगर निराधार बातें आप कह रहे हैं करते हैं तो क्यों कर रहे हैं ऐसी बात?
ये तो उनसे पूछिए आप।
बात कर रहे हैं कि बहुमत का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 10 की 10 सीटें भाजपा जीती, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 90 में से 75 में आ गई। तो क्या क्या बदला है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि 90 सीट कुछ आपको बहुमत मिल सकता है?
वो हरियाणा में नहीं, पूरे उत्तर भारत में स्थिति रही। उस टाइम मुद्दे और थे और होते ही है, लोकसभा के मुद्दे और हैं, विधानसभा के और हैं, लोग पूछ रहे हैं। 154 जो इस आशा से इनको बनाया था, हमारे को भी आशा थी कि भाई 154 वायदे किए हैं, हर वादे के लिखाया था, वो आशा लोगों की निराशा में बदल चुकी और हर वर्ग इससे विमुख है, चाहे वो किसान हो। मजदूर कर्मचारियों को कहा कि हम पंजाब के समान वेतन मान देंगे, वो तो छोड़ो, उनका आचार्य ही नहीं दिया।
मुख्य मुकाबला किस में देखते हैं आप, असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए तो?
कांग्रेस और भाजपा में, जैसे आपने कहा तो पिछली बार 24% वोट थी, अब तो 1 पॉइंट कुछ है, और इसी प्रकार से JJP का जो आप कह रहे हैं कितने परसेंट वोट आए, इसमें तो कांग्रेस की आई 28%, दूसरे नंबर पे कांग्रेस ही थी। मुकाबला भाजपा में, और वही मैंने बहुत पहले कह दिया था, और जैसे जैसे चुनाव आएगा, आ ही गया, जिस दिन वोटिंग होगी आप देखेंगे।
ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा, उनसे बात कर रहे थे अरविंद छाबड़ा। बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक व्यक्ति और उनके परिवार की हत्या हो गई। कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति बंधु प्रकाश लाल RSS के कार्यकर्ता थे। हालांकि उनकी मां का दावा है कि RSS या BJP से उनके बेटे का कोई संबंध नहीं था। ऐसे में ये रहस्य और गहरा गया है कि इस हत्याकांड की मूल वजह आखिर क्या है। सुनिए हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की ग्राउंड रिपोर्ट।
बंगाल के प्रसिद्ध नवाब सिराजुद्दौला के हजारद्वारी महल से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर बसे जियागंज में हुए ट्रिपल मर्डर का रहस्य मानो उस महल के हजार दरवाजों के बीच कहीं छिप गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस और CID इस रहस्य को भेदने की कोशिशें कर रही है, लेकिन घटना के 6 दिन बाद भी इस मामले में किसी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अलबत्ता कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनमें मृतक बंधु प्रकाश पाल के पिता अमर पाल भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर ज्ञानवंत सिंह ने BBC को बताया कि अब तक की जांच में स्पष्ट हुआ है कि हत्याकांड का कारण राजनीतिक या धार्मिक नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है।
होल फैमिली मर्डर वाले का इंसिडेंट होते हैं, वो होते और हमेशा कुछ पर्सनल इश्यू आता है उन लोगों का।
तो इसमें सर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका कोई RSS या BJP लिंक नहीं था, ये गलत रूमर?
नहीं, वो तो नहीं था, तो उसकी माँ ने बोला है, लेडी के भाई ने बोला है, बट नॉट ओनली RSS।
गौरतलब है कि बीते 8 अक्टूबर की सुबह जियागंज थाना इलाके के लेबू बागान में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी ब्यूटी पाल और उनके 7 साल के बेटे को अज्ञात अपराधियों ने बेरहमी से काट डाला था। तब भाजपा के बंगाल प्रमुख दिलीप घोष ने आरोप लगाया था कि बंधु प्रकाश पाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई है क्योंकि वे RSS के स्वयं सेवक थे। अमृत शिक्षक की मां माया पाल ने कहा है कि ये बातें बिल्कुल झूठी हैं, उनके बेटे का संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन से नहीं था।
আমার ছেলের কোনো ত্রুটি নাই, নিরীহ। এখন কথা হচ্ছে সবাই বলছে যে RSS এর করতো, কেউ বলছে অমুক, কিন্তু RSS এর করতো না জানি, তাই বলে RSS করতো না, কোনো পার্টিও করতো না।
ভারতীয় জনতা পার্টি কে জিয়াগঞ্জ মন্ডল অধ্যক্ষ প্রতাপ হালদার লেবু বাগান ইলাকে মে বন্ধু প্রকাশ পাল কে পড়োশি হ্যায়। উনহোনে BBC সে কাহা কি বন্ধু প্রকাশ ভাজপা কে কার্যকর্তা নহি থে, লেকিন উনকে RSS সে জুড়ে হোনে কি বাতে কহি জা রহি হ্যায়।
ও বন্ধু প্রকাশ পাল ও আমারা সংঘ কা RSS কা শাখা লাগতা হ্যায়, স্বয়ংসেবক শাখা লাগতা হ্যায়, ও শাখা সাপ্তাহিক যে শাখা হো উসকা ঘর বারালা সাগরদিঘি বারালা यहाँ से 20 किलोमीटर दूर आदिबारी है बंधु प्रकाश पाल का। वहाँ पर जो संघों का वो शाखा में जाता है, संघों का सप्ताह में साप्ताहिक जो शाखा हो रहा है ना, बैठक है, वहाँ पर जाता है।
इनके परिवार के लोग तो कह रहे हैं कि ना तो संघ का था ना वो BJP का था वर्कर, उनकी माँ ने कहा है। तो फिर आप लोग कैसे क्लेम कर रहे हैं कि वो RSS के वर्कर थे? कोई प्रमाण हो, कोई रजिस्टर हो, कोई शाखे की तस्वीर हो, ऐसा कुछ है क्या आपके पास?
शाखा का ये सब नहीं है, रजिस्टर ना है, शाखा चलता है वहाँ पर, जो लोग जाता है हमारे RSS शाखा का, वही लोग हमारे RSS का कोई रजिस्टर वो सब नहीं है।
इधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के मुर्शिदाबाद जिला अध्यक्ष अबू तहिर खान ने बीबीसी से कहा कि हमें नहीं पता कि भाजपा के नेता कथित तौर पर झूठी खबरें फैलाकर क्या साबित करना चाहते हैं।
वो तो कोई पार्टी का आदमी नहीं है ना, वो कोई पार्टी का आदमी नहीं है, वो सिर्फ टीचर ही था, वो पार्टी का कोई पार्टी का कोई काम नहीं किया।
बंधु प्रकाश पाल अपनी माँ माया पाल के इकलौते पुत्र थे। वे अब 70 साल की हो चुकी हैं। शादी के कुछ सालों बाद ही उन्होंने अपने पति के साथ रहना छोड़ दिया था। उसके बाद वे अपने मायके के गांव सोहापुर बड़ला आ गईं और अपने भाई के घर में रहने लगीं। यहीं रहते उन्होंने अपने बेटे बंधु प्रकाश, उनकी जुड़वा बहन बंधु प्रिया और अपनी बड़ी बेटी बंधु प्रीति का लालन पालन किया। उनकी एक पड़ोसी बोली शाह ने बीबीसी से कहा कि बंधु प्रकाश की किसी से दुश्मनी नहीं थी।
वो शुद्ध एखाने स्कूले चाकरी करतो आर ओई एलआईसीटाई करतो एटाई जानी आमरा।
बहरहाल सीआईडी की टीम ने कल बड़ला गांव जाकर मृत शिक्षक की मां माया पाल और उनके संबंधियों से 7 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद वह टीम जियागंज में उस घर पर भी गई जहां बंधु प्रकाश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। इस बीच मुर्शिदाबाद के एसपी मुकेश कुमार ने दावा किया है कि उन्हें कुछ ठोस सबूत मिले हैं। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर देगी। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए मुर्शिदाबाद में।
तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC के कर्मचारी बीते 9 दिनों से प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल पर हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में एक बस ड्राइवर ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार के रुख में नरमी के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। अधिक जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने बात की बीबीसी तेलुगु संवाददाता दीप्ति बतनी से।
देखिए, ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये तेलंगाना स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो TSRTC के एक नाम से जारी गवर्नमेंट के अतीत चलता है, पर मेन डिमांड इनका ये है कि इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट में विलीन किया जाए और इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तौर पे जो भी सैलरीज हो या जो भी बेनिफिट्स हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स इनको भी दे। ये बात को लेकर इन्होंने 1 महीने पहले KCR गवर्नमेंट को और TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी एक स्ट्राइक नोटिस दिया था। इन लोगों ने अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया यूनियंस को। दशहरा के 1-2 दिन पहले इनको बातचीत के लिए बुलाया, पर वो बातचीत सफल नहीं हुई। IAS ऑफिसर्स की कमेटी बिठाई गई थी ताकि ये लोग एम्प्लॉयज के साथ बात करें, पर वो बातचीत सफल नहीं हुई। वहां से लेकर फिर इन्होंने स्ट्राइक पे चले गए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है तेलंगाना में बहुत ही अहमियत है, ये स्कूल्स हो या बसेस, कॉलेजेस हो या गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे लोग ये TSRTC पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो उसके बाद काफी इम्पैक्ट हुआ है जो नॉर्मल एवरीडे लाइफ है। पर KCR की गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि एम्प्लॉयज यूनियंस के साथ बातचीत नहीं करेंगे और ये ब्लैकमेल करने की एक टेक्निक है एम्प्लॉयज की, और आगे जाकर TSRTC को प्राइवेटाइजेशन करने की बात भी छेड़ी गई थी। जब KCR ने एम्प्लॉय से बातचीत रोक दी, वहां पे KCR ने साफ ESMA एक्ट जो है, जो इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट है, वो एक्ट के अंदर एम्प्लॉयज को ये कहकर बोल दिया कि अभी ये अपने आप वॉलेंटरीली का अपना जॉब छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये है कि 50,000 से ज्यादातर एम्प्लॉयज जो TSRTC में काम करते थे, अभी उनके पास जो नौकरी है वो नहीं रही है। तो इस बात को लेकर जो स्ट्राइक है ये काफी अभी थोड़ी गर्माहट में चल रही है।
खबर ये भी आई है कि खम्मम में एक ड्राइवर ने खुद को आग लगा लिया, एक कर्मचारी ने खुद को आग लगा ली और उसकी मौत हुई है। उसके बाद हालात बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण हुए हैं, तो कैसी स्थिति है अभी?
ये जो पूरा उसका आउटकम हुआ है कि 50,000 एम्प्लॉयज अपने जॉब खो चुके हैं, इस आउटकम को लेकर बहुत सारे एम्प्लॉयज में तनाव बढ़ गया है। वो अपने डिमांड्स पे डटे हैं और उसी तरफ गवर्नमेंट भी अपने डिसीशन पे डटी है। इसी को लेकर कम्मम में एक एम्प्लॉय ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी और उनकी मौत हो गई है। तो अभी आगे जाकर एम्प्लॉयज ने अपना एक प्लान ऑफ एक्शन भी अनाउंस किया है कि अभी 19 तारीख तक उन्होंने हर रोज एक एक प्लान ऑफ एक्शन अनाउंस किया है, और 19th को पूरे स्टेट में बंद की भी ऐलान की है एम्प्लॉयज यूनियंस ने। तो देखना होगा किस तरह से ये एजुटेशन जो है, जो TSRTC के एम्प्लॉयज से शुरू हुई है, वो कहाँ तक जाएगी ये अभी देखना होगा।
सरकार से नाराज हैं तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी। अधिक जानकारी दे रही थी दीप्ति बतिनी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था फिलहाल सुस्ती के दौर से गुजर रही है, लेकिन सरकारें ये मानने को कतई तैयार नहीं। सुनते हैं वसतुल्ला खान की डायरी।
विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय विकास दर पिछले 3 वर्ष में 7.2% से कम होता होता मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6% तक आन पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त सबसे सुस्त है उनमें ब्राजील और भारत ऊपर के पायदान पे हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ने ताज़ा लेबर सर्वे में कहा है कि भारत में इस वक्त जितनी बेरोजगारी है वो पिछले 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा है। हालांकि मैं भारतीय नागरिक नहीं, फिर भी मेरा दिल इन आंकड़ों को नहीं मान रहा, क्योंकि विश्व बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चली गई है कि अगर इस वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान 2% का विकास दर भी छू ले तो मानो भाला मार लिया। रोजाना खबरें आ रही हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले में 40% की गिरावट आ गई है, औद्योगिक विकास का चक्का जाम है और रुपया डॉलर के पैरों से लटक रहा है। मगर मोदी सरकार की तरह इमरान खान सरकार भी यही कह रही है कि सब अच्छा है, जनता इन आंकड़ों के फेर में मत आए, बल्कि ये देखे कि इस वर्ष टैक्स खाते में पिछले वर्ष के मुकाबले में दुगने नाम दर्ज हुए। महंगाई मत देखिए, ये देखिए कि किस तरह हम टैक्स चोरों को उल्टा लटका रहे हैं। अगले वर्ष और अच्छा हो जाएगा, बस घबराना नहीं है। जिस तरह मुझे अपनी सरकार पर यकीन है कि वो बहुत सच्चाई के साथ झूठ बोल रही है, इसी तरह मुझे भारत के कानून, संचार और IT विभाग के मंत्री रविशंकर प्रसाद पर भी यकीन है, जिन्होंने राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के ताल्लुक से BJP सरकार को बदनाम करने पर तुले बैठे हैं। अगर अर्थव्यवस्था खराब होती तो फिर एक ही दिन में बॉलीवुड की 3 फिल्में 120 करोड़ रुपए कैसे कमा लेती? जहां रविशंकर प्रसाद जी खड़े हैं वहां से अगर देखें तो उनकी बात बिल्कुल सोलह आने है। वाकई अगर बेरोजगारी इतनी गंभीर होती तो लोग सिनेमा देखने क्यों जाते, मधुशाला पे ताले ना लग जाते, छोले भटूरे के ठेले ना उलट जाते और लोग घरों में रहने की बजाय बसों में क्यों सफर करते? इसका मतलब है सब अच्छा है। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ के जमाने में जब भारत से टमाटर आना बंद हो गया तो मुशर्रफ साहब ने कहा, क्या गरीबों का टमाटर खाना बहुत ज़रूरी है? सालन में दही नहीं डाल सकते? और कौन कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है? ऐसा होता तो इतनी मोटरसाइकिलें कैसे बिकती? फ्रांस की रानी मैरी एंतुआ ने बस इतना ही तो कहा था कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खा लेते? उसके बाद फ्रांस उलट गया। मगर हमारे यहाँ तो मानो हर कुर्सी पर मैरी एंतुआ का भूत बैठा है। मुझे लगता है गड़बड़ आदमी के दिमाग में नहीं, शासन की गद्दी में है। इस पे बैठते ही सब अच्छा महसूस होने लगता है। क्यों? इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए। यकीन ना आए तो BJP और तहरीक इंसाफ को अगली बार अपोजिशन में बैठने का मौका दे दीजिए। चंद घंटों में ही सब अच्छा है, सब बुरा है में ना बदल जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी।
वसत की डायरी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं कि आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के पन्नों पर नज़र डालकर कमलेश स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कमलेश, आज क्या है अखबारों में?
आज इंडियन एक्सप्रेस सहित और कई अखबारों ने खबर दी है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दम है तो विपक्ष अपने घोषणा पत्र में धारा 370 और 35A को वापस लागू करने का वादा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की हालत सामान्य होने में 4 महीनों से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं महाराष्ट्र में लातूर में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहले रफाल विमान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ्रांस जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी में सौदे को लेकर गलतियाँ होने का पछतावा है, इसलिए वो फ्रांस गए। इसी अखबार में खबर है इंडियन एक्सप्रेस में कि वर्धा विश्वविद्यालय ने 4 दिनों पहले जिन छात्रों को निकालने का आदेश दिया था उसे रद्द कर दिया गया है। इन छात्रों ने मॉब लिंचिंग और रेप के आरोपी नेताओं को संरक्षण देने के खिलाफ धरना दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई और फिर 17 नवम्बर को फैसले को देखते हुए 10 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। अखबार ने अयोध्या के DM अनुज कुमार झा के हवाले से ये खबर दी है। दैनिक जागरण ने खबर दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली BCCI के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बोर्ड के नए सचिव हो सकते हैं। इसके अलावा एक खबर ये है कि पिछले दो महीने में जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर दी है और नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट रणबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। जनसत्ता में खबर है कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर रविवार को 6% कर दिया है, जबकि अप्रैल में ये विश्व बैंक ने ही 7.5% रहने का अनुमान लगाया था।
जी, इस पर काफ़ी चर्चा भारतीय मीडिया में हो रही है और अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद कमलेश। और अब वक्त हो चला है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल रूस में समाप्त हुई विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का अभियान 1 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 4 पदकों के साथ समाप्त हुआ। 48 किलो भार वर्ग में भारत की मंजू रानी फाइनल में पहुंची, लेकिन वो कल मेजबान रूस की एकतेरिना पालसेवा के दमदार मुक्कों का सामना नहीं कर सकी और 4-1 से हार गई। पूरे भारतीय महिला दल में वो ऐसी इकलौती मुक्केबाज थी जो फाइनल में पहुंची, जबकि 6 बार की विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। उनके अलावा जमुना बोरो और लवलीना बोरगोहेन ने भी कांस्य पदक अपने नाम किए। और अब समीक्षा। भारत ने कल पुणे में दूसरे टेस्ट मैच को चौथे ही दिन अपने नाम किया। आखिरकार भारत बेहद दमदार है या फिर दक्षिण अफ्रीका बेहद कमजोर?
कोई ये भी पूछ सकता है हमसे खड़ा होके कि आप कैसे कहते हैं कमजोर टीम को हरा दिया, हमने तो उस टीम को कमजोर कर दिया। ये भी तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भारतीय टीम इतना अच्छा क्रिकेट खेली कि दूसरी टीम कमजोर हो गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा बैलेंस्ड हमको देखना पड़ेगा, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय टीम इस वक्त बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है।
ये शब्द हैं क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली के। अब खेल आज 5वें दिन तक पहुंचता भी कैसे, जब दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 189 रन पर ही सिमट गई, जबकि पहली पारी के आधार पर वो 326 रन से पिछड़ी हुई थी और भारत ने एक पारी और 137 रन से मैच अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर ने 48, तेम्बा बावुआ ने 38, वर्नोन फिलेंडर ने 37 और केशव महाराज ने 22 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 52 रन देकर 3 और आर अश्विन ने 45 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। लेकिन टेस्ट टीम में वापसी का जश्न मनाया तेज गेंदबाज उमेश यादव ने, जिन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में भी केवल 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।
ये नहीं था कि नहीं हमने एक दिन बॉलिंग कर ली है, हम आराम करके बैटिंग करके कर सकते हैं, बट नहीं, सारे बॉलर ने बोला नहीं, वी आर रेडी, हम अंदर जाएंगे और बॉलिंग करने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो हमने कोशिश यही की कि नए बॉल से अगर ब्रेक थ्रू मिलेगा टीम को तो बाकी जो काम है स्पिनर के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, तो बस फोकस वही था।
फोकस था जीत पर, और उमेश यादव ही नहीं सभी गेंदबाज कप्तान विराट कोहली के भरोसे पर खरा उतरे। तभी तो विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन देने का निर्णय लिया। खुद विराट कोहली अपनी टीम के खेल से बेहद खुश हैं।
We have to be absolutely professional in every session that we play. So yeah, I think it's much more demanding on the players now, which is a good thing because it'll keep the standard of test cricket high.
टेस्ट क्रिकेट के अनुरूप प्रदर्शन, लेकिन दक्षिण अफ्रीका तो इस पैमाने पर कहीं नहीं ठहरती। वहीं भारत के उभरते युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने डच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने जापान के युसुके ओनादेरा को 3 गेम तक चले कड़े संघर्ष के बाद 15-21, 21-14, 21-15 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का कहना है कि तुर्की के हमले को रोकने में सीरियाई सेना उनकी मदद करेगी। जापान में आए भीषण तूफान हेगिबिस के बाद बचाव के लिए कई हजार जवानों और बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। यह तूफान कई सालों में आए शक्तिशाली तूफानों में से एक है। पोलैंड में आम चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल के मुताबिक लॉ एंड जस्टिस पार्टी फिर से जीतती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक पार्टी को करीब 44% वोट मिल रहे हैं। ट्यूनिशिया में राष्ट्रपति चुनाव के बाद आ रहे एग्जिट पोल में राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार कैस सईद की एक तरफा जीत बताई जा रही है। इक्वाडोर में सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे समूह के बीच बातचीत शुरू हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।